एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपका पहला मेजबान और एकत्र ज्ञान गोष्ठी के इस नए अंक में आप सबका बहुत स्वागत है।
और मैं हूं आपकी दूसरी मेजबान। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मुझे लगता है आज के समय के लिए बेहद जरूरी किताब पर बात करने वाले हैं।
हाँ, कौन सी किताब है ये?
जोनाथन ब्लिट्जर की एवरीवन हु इज गॉन इज हियर।
अच्छा, Everyone Who's Gone Is Here, नाम तो काफी सोचने वाला है, और आप कह रही हैं कि ये आज के लिए जरूरी है, क्यों?
देखिए, हम रोज सुनते ना, सीमा पर प्रवासन, माइग्रेशन, बॉर्डर पर भीड़ है, नया संकट आ गया है।
हाँ बिल्कुल, हेडलाइंस भरी रहती हैं।
पर ये किताब उन हेडलाइन से बहुत आगे जाती है। ये समझाती है कि ये संकट आता कहाँ से है। मध्य अमेरिका के देश है एल साल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरस, वहां से इतने लोग अपना घर बार छोड़कर क्यों निकल पड़ते हैं।
अच्छा, तो ये क्यों का जवाब देती है?
हाँ, और इसमें अमेरिका की क्या भूमिका रही है, और ये कोई नई बात नहीं है, मतलब दशकों पुरानी कहानी है ये, जिसकी परतें धीरे धीरे खुलती हैं और आज से जुड़ती हैं।
तो ये सिर्फ एक, जिसे कहते हैं, बॉर्डर प्रॉब्लम वो नहीं है।
नहीं,
ये इतिहास, राजनीति और इंसानी त्रासदियों की कहानी है।
बिल्कुल।
तो चलिए फिर इसे समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत लेखक से करते हैं। ये जोनाथन ब्लिट्जर कौन है, क्यों इनकी बात अहम है?
जरूर। देखिए, जोनाथन ब्लिट्जर कोई नौसिखिया नहीं है इस मामले में। वो द न्यूयॉर्कर मैगजीन के जाने माने स्टाफ राइटर हैं।
हाँ, सुना मैंने उनका नाम।
और करीब 10 साल से, मतलब एक दशक से, वो इसी पर लिख रहे हैं, इमिग्रेशन, अमेरिकी विदेश नीति और खासकर लैटिन अमेरिका के मामले। उनकी रिपोर्टिंग बहुत गहरी होती है।
अच्छा, क्या खास है उनकी रिपोर्टिंग में? मतलब क्यों वो इस विषय के लिए इतने फिट माने जाते हैं?
मेरे ख्याल से दो बातें हैं। एक तो वो जमीन से जुड़े हैं। उन्होंने सालों साल बॉर्डर पर, डिटेंशन सेंटरों में, कोर्ट्स में, मतलब हर जगह जाके देखा है, बात की है
लोगों से सीधे।
हाँ, शरण चाहने वालों से, वकीलों से, जजों से, सरकारी अधिकारियों तक से। वो सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं लिखते। और दूसरी बात, वो इस जमीनी हकीकत को बड़े पैमाने पर, मतलब पॉलिसी लेवल पर, राजनीतिक विश्लेषण के साथ जोड़ पाते हैं। वो वॉशिंगटन डीसी में क्या चल रहा है वो भी समझते हैं।
अच्छा, तो वो पुल बनाते हैं एक तरह से, नीति बनाने वालों और जमीन पर जो लोग हैं उनकी हकीकत के बीच का।
बिल्कुल। और शायद उनकी दोनों भाषाओं पर पकड़ और लैटिन अमेरिका में उनका आना जाना, ये सब भी बहुत मदद करता है।
हाँ, ये तो है।
वो उन लोगों की आवाज बन पाते हैं जिनकी कहानियां अक्सर, यू नो, सरकारी बातों में खो जाती हैं, कि व्हाइट हाउस में एक फैसला हुआ और उसका असर हजारों मील दूर किसी गांव में कैसे पड़ रहा है।
तो उनका नजरिया वाकई महत्वपूर्ण है। चलिए अब किताब पर आते हैं। Everyone Who's Gone Is Here, क्या है ये किताब, इसका सार क्या है?
जैसा हमने शुरू में कहा, ये मध्य अमेरिकी प्रवासन संकट की कहानी है, लेकिन सूखी कहानी नहीं, पूरी फैली हुई कई पीढ़ियों की कहानी।
कई पीढ़ियों की।
हाँ, और इसका मकसद उस सवाल का गहरा जवाब देना है जो अक्सर राजनीतिक बहसों में, मतलब बहुत हल्के में लिया जाता है, कि भई ये लोग आ क्यों रहे हैं।
और किताब का मुख्य तर्क क्या है? क्या ये वही बात कहती है कि लोग बस बेहतर नौकरी या पैसे के लिए आ रहे हैं?
नहीं, यहीं पर किताब एक बहुत बड़ा और शायद विवादास्पद तर्क देती है। ब्लिट्जर कहते हैं कि ये जो हमें सीमा पर बार बार संकट दिखता है ना,
हाँ,
ये कोई अचानक से आसमान से नहीं टपका, ना ही ये अलग थलग घटनाएं हैं, बल्कि ये पिछले 40 सालों की जो अमेरिकी विदेश नीति रही है, खासकर मध्य अमेरिका को लेकर,
जी,
ये उसका सीधा नतीजा है, एक तरह से अनुमानित और हाँ, दुखद नतीजा है।
ओह,
किताब इस सोच को चुनौती देती है कि लोग अपनी मर्जी से, शौक से घर छोड़ रहे हैं। वो कहती है ये मजबूरी है, और इस मजबूरी की जड़ें राजनीतिक अस्थिरता, हिंसा, गरीबी में है, जिसे बनाने में और बिगाड़ने में अमेरिका का हाथ रहा है।
बाप रे, ये तो बहुत बड़ा दावा है। मतलब सीधे सीधे अमेरिका की नीतियों पर उंगली उठा रही है किताब।
हाँ, और वो इसे साबित करने की कोशिश करती है पूरी कहानी सुनाकर।
कैसे, कहाँ से शुरू होती है कहानी?
किताब हमें 1980s के दशक में ले जाती है, एल साल्वाडोर, ग्वाटेमाला, वहां भयंकर गृह युद्ध चल रहे थे।
हाँ, सुनाया उन युद्धों के बारे में।
उस समय अमेरिका में रीगन प्रशासन था, कोल्ड वॉर का जमाना था, कम्युनिज्म का डर, तो अमेरिका ने मध्य अमेरिका में दखल दिया। किताब बताती है कि कैसे अमेरिका ने कम्युनिज्म रोकने के नाम पर वहां की दमनकारी सरकारों को, यहां तक कि डेथ स्क्वाड,
मौत के दस्ते,
हाँ, उनको पैसा दिया, ट्रेनिंग दी।
हे भगवान, इसका नतीजा?
नतीजा भयानक था, हिंसा बेतहाशा बढ़ी, मानव अधिकारों का कोई मतलब नहीं रहा, हजारों लोग मारे गए, लापता हो गए, और इसी हिंसा से बचने के लिए लोगों की पहली बड़ी लहर उत्तर की तरफ भागी, अमेरिका की तरफ।
तो ये पहले शरणार्थी थे, आर्थिक प्रवासी नहीं।
बिल्कुल, ये जान बचाकर भाग रहे थे।
और फिर कहानी अमेरिका पहुंचती है।
हाँ, कहानी उनका पीछा करती है लॉस एंजलिस जैसे शहरों में, लेकिन वहां क्या हुआ, उन्हें कोई खास मदद नहीं मिली, समाज के हाशिए पर रह गए, अकेले पड़ गए। और इसी माहौल में खुद को बचाने के लिए कुछ युवाओं ने गैंग बना लिए, जिनमें सबसे बदनाम नाम है MS-13।
MS-13, वो तो बहुत कुख्यात गैंग है।
हाँ, और ध्यान देने वाली बात यह है किताब के अनुसार कि ये गैंग एल सेल्वाडोर में नहीं, अमेरिका में बना, लॉस एंजलिस की सड़कों पर।
अच्छा, ये बात तो शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि MS-13 की जड़ें अमेरिका में हैं। फिर क्या हुआ इन गैंग्स का?
फिर आया 90s का दशक, क्लिंटन प्रशासन, उनका नारा था अपराध पर सख्ती।
हाँ, टफ ऑन क्राइम।
1996 में एक कानून आया, IRIRA, इलीगल इमिग्रेशन रिफॉर्म एंड इमिग्रेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट। इस कानून ने डिपोर्टेशन, मतलब देश निकाला, बहुत आसान कर दिया।
कितना आसान?
बहुत। नतीजा ये हुआ कि हजारों की संख्या में गैंग सदस्यों को, जिनमें कई ऐसे थे जो लगभग पूरी जिंदगी अमेरिका में ही रहे थे, उनको वापस उनके मूल देशों में भेज दिया गया, एल साल्वाडोर, होंडुरस, ग्वाटेमाला।
ये तो ऐसा हुआ जैसे अमेरिका ने अपनी प्रॉब्लम उठाई और वापस उन देशों में फेंक दी जो पहले से ही कमजोर थे।
एकदम सही, किताब यही तर्क देती है। ब्लिट्जर इसे कहते हैं बीमारी को एक्सपोर्ट करना।
बीमारी को एक्सपोर्ट करना, वाह।
ये गैंग सदस्य अपने साथ अमेरिकी जेलों का अनुभव, वहां की क्रूरता, वहां के तौर तरीके लेकर वापस पहुंचे, और उन देशों की कमजोर सरकारें, कमजोर पुलिस, वो इनका मुकाबला नहीं कर पाई।
और यहीं से आज के संकट की कड़ी जुड़ती है।
बिल्कुल, जो गैंग अमेरिका में पनपे, उन्हें वापस भेजा गया, उन्होंने मध्य अमेरिका में आतंक मचा दिया, वसूली, जबरन भर्ती, हिंसा, खासकर महिलाओं के खिलाफ हिंसा, ये सब आम हो गया। सरकारें या तो भ्रष्टाचार में लिप्त थीं या बेबस।
तो लोगों के पास कोई चारा नहीं बचा?
नहीं, और इसी माहौल ने आज के पलायन को जन्म दिया। अब सिर्फ मर्द नहीं, पूरे पूरे परिवार, अकेले बच्चे, सब भाग रहे हैं उस गैंग हिंसा से बचने के लिए।
तो ये पूरी चेन है, 80 के दशक का अमेरिकी दखल, उससे भागे शरणार्थी, अमेरिका में गैंग बने, गैंग वापस भेजे गए, इन्होंने मध्य अमेरिका में हिंसा फैलाई, और आज लोग फिर से भाग रहे हैं।
एक दुष्चक्र। बिल्कुल, और किताब का जो आखिरी हिस्सा है वो ओबामा, ट्रंप और फिर बाइडेन प्रशासनों को देखता है कि उन्होंने इस स्थिति पर कैसे रिएक्ट किया। ज्यादातर किताब कहती है वो समस्या की इन गहरी जड़ों को समझ ही नहीं पाए या समझना नहीं चाहा, हर बार इसे एक नया संकट मान लिया गया
और हल्का सोचा गया।
ज्यादातर ध्यान बस बॉर्डर पर सख्ती बढ़ाने पर रहा, दीवारें, एजेंट, कड़े कानून।
ये तो हुई किताब की मोटी मोटी रूपरेखा। चलिए थोड़ा और अंदर चलते हैं। आपने कहा 80 के दशक की बात है, गृह युद्ध, अमेरिकी भूमिका, क्या कोई इंसानी कहानी भी है इसमें, कोई चेहरा?
हाँ हाँ, बिल्कुल। किताब सिर्फ पॉलिसी की बात नहीं करती, जैसे शुरुआत में ही 80 के दशक वाले हिस्से में एक कहानी है जुआन रोमागोजा की।
कौन थी ये?
वो एल साल्वाडोर में एक सर्जन थे, डॉक्टर। उनका जुर्म, वो गरीबों का, जरूरतमंदों का इलाज कर रहे थे गृह युद्ध के बीच में।
इसमें क्या जुर्म है?
सरकारी बलों को शक हुआ कि ये विद्रोहियों की मदद कर रहे हैं, बस उन्हें पकड़ लिया गया और भयानक टॉर्चर किया गया।
एक डॉक्टर को सिर्फ इसलिए कि वो अपना काम कर रहे थे?
हाँ, और ये वो सरकारी बल थे जिन्हें अमेरिका का समर्थन हासिल था। रोमागुजा किसी तरह बच निकले, अमेरिका पहुंचे। उनकी कहानी उस पहली पीढ़ी के दर्द को दिखाती है। वो पैसे कमाने नहीं आए थे, वो उस हिंसा से भाग रहे थे जिसे अमेरिका हवा दे रहा था।
और किताब कहती है कि अमेरिका ने उन्हें शरण भी आसानी से नहीं दी।
हाँ, किताब बताती है कि उस वक्त अमेरिका अक्सर ऐसे शरण के दावों को खारिज कर देता था, शायद इसलिए कि उन्हें मानना अपनी ही विदेश नीति की नाकामी को कबूलना होता। यहीं से वो, जिसे कहते हैं ना, प्रॉब्लम की जड़ें दिखती हैं।
ये तो बहुत परेशान करने वाली बात है, अपनी ही बनाई स्थिति के शिकार लोगों को। खैर, फिर कहानी आगे बढ़ी, अमेरिका में शरणार्थी आए, 90s का दशक, निर्वासन।
हाँ, फिर फोकस आता है उन युवाओं पर जो लॉस एंजलिस जैसे शहरों में थे, अकेलापन, सपोर्ट की कमी, और फिर गैंग्स का बनना, MS-13।
जो अमेरिका में बने?
हाँ, फिर क्लिंटन का दौर, वो आयआयरा कानून 1996 का, वो बहुत अहम मोड़ था। उसने डिपोर्टेशन का दायरा बहुत बढ़ा दिया, मतलब छोटे मोटे अपराधों के लिए भी लोगों को, यहाँ तक कि ग्रीन कार्ड वालों को भी डिपोर्ट किया जाने लगा।
मामूली जुर्म के लिए भी देश निकाला? इसका नतीजा क्या हुआ फिर?
ये थे, और किताब का तर्क यही है कि अमेरिका ने ये सोचे बिना किया कि इसका अंजाम क्या होगा। उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को बाहर फेंक दिया, एक ऐसी जगह जो उसे झेलने के लिए तैयार नहीं थी।
और अंजाम क्या हुआ?
ये किताब के अगले हिस्से में होगा, 2000-2010 के दशक में।
अंजाम भयानक हुआ। ये जो गैंग मेंबर वापस गए, MS-13, Barrio-18, ये वहां के लोकल क्राइम पर हावी हो गए। इनके पास अमरीका का तजुर्बा था, ज्यादा क्रूरता थी, संगठन था।
और वहां की सरकारें,
पुलिस
कमजोर
या भ्रष्ट।
ये गैंग एक तरह से पैरेलल सरकार चलाने लगे। जबरन वसूली, जिसे रेंट कहते हैं, वो आम हो गई। बच्चों को जबरन गैंग में भर्ती करना, यौन हिंसा, हत्याएं, लोगों की जिंदगी नर्क बन गई।
तो फिर लोगों के पास क्या रास्ता बचा?
बहुत कम। किताब में एक कहावत का जिक्र है जो उस वक्त की हकीकत बताती है। तीन ही रास्ते थे, वेर यानी देखो गैंग में शामिल हो जाओ, पागार यानी भुगतान करो, गैंग को हफ्ता दो, या वोलार यानी उड़ जाओ, देश छोड़ के भाग जाओ।
भागना पसंद नहीं, मजबूरी थी।
बिल्कुल, जिंदा रहने की मजबूरी। और इसी माहौल ने आज के पलायन को पैदा किया है, जिसमें अब पूरे पूरे परिवार भाग रहे हैं।
दिल दहल जाता है सुनकर, मतलब इतिहास खुद को दोहरा रहा है। जिन हालात से पहली पीढ़ी भागी थी, उन्हीं से अब तीसरी चौथी पीढ़ी भाग रही है। बस खलनायक बदल गए, पहले वर्दी वाले, अब गैंग वाले, जिन्हें अमेरिका ने ही वापस भेजा था।
हाँ, और ये हमें किताब के आखिरी हिस्से पर लाता है, 2014 से अब तक का दौर, जिसे संकट का दौर कहा जाता है।
अमेरिकी प्रशासनों ने क्या किया इस पर? ओबामा, ट्रंप, बाइडेन?
यहीं पर किताब वो ऐतिहासिक भूलने की बीमारी वाली बात करती है। जैसे ओबामा के समय 2014 में अचानक बहुत सारे अकेले बच्चे बॉर्डर पर आने लगे।
हाँ, वो खबरें आई थी।
प्रशासन हैरान था, जैसे ये पता ही ना हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसे बॉर्डर कंट्रोल प्रॉब्लम समझा गया। ये नहीं देखा गया कि ये दशकों पुरानी नीतियों का नतीजा है, एक शरणार्थी संकट है। तो कुछ मदद की कोशिशें हुई, पर साथ में बॉर्डर पर सख्ती और डिपोर्टेशन भी बढ़ा, जड़ों पर काम नहीं हुआ।
और ट्रंप, उनकी नीतियां तो बहुत चर्चा में रहीं।
ट्रंप प्रशासन ने तो किताब के अनुसार सिर्फ डराने और क्रूरता पर जोर दिया। स्टीवन मिलर जैसे लोग थे जिन्होंने नीतियां बनाई, उनका मकसद ही था लोगों को रोकना, चाहे जैसे भी।
जैसे वो जीरो टॉलरेंस, बच्चों को माँ बाप से अलग करना।
हाँ वो, या फिर मेक्सिको में रहें पॉलिसी, जहाँ शरण चाहने वालों को मेक्सिको के खतरनाक शहरों में इंतजार करना पड़ता था। किताब कहती है ये न सिर्फ नाकाम थी, बल्कि अमानवीय थी और कानूनों का उल्लंघन भी।
और बाइडेन प्रशासन, उन्होंने तो कहा था कि वो मानवीय रुख अपनाएंगे।
किताब कहती है कि उन्हें विरासत में एक टूटा फूटा सिस्टम मिला, और लोग तो आ ही रहे थे, वादे थे मानवीय रुख के, लेकिन असलियत में वो भी उसी पहले रोकेंगे फिर देखेंगे वाली सोच से जूझ रहे हैं। बड़ा बदलाव लाला मुश्किल हो रहा है।
और किताब इमिग्रेशन सिस्टम की अंदरूनी दिक्कतों पर भी बात करती है।
हाँ, कि कैसे कोर्ट में केस भरे पड़े हैं। जज रॉबर्ट चेन का उदाहरण है, जो अकेले हजारों केस देख रहे हैं। कैसे लोगों को हिरासत में रखना, डिटेंशन, एक बड़ा बिजनेस बन गया है, और कैसे कानून असलियत से बहुत दूर है।
ये तो बहुत बहुत गहरा विश्लेषण है। तो अगर हम इस पूरी कहानी से कुछ मुख्य बातें निकालें, कुछ सबक, थीम्स, तो वो क्या होंगी?
हाँ, कई अहम संदेश हैं। मेरे लिए पहला और सबसे बड़ा है अमेरिकी विदेश नीति का सीधा रोल। ये किताब साफ कहती है कि अमेरिका इस कहानी में सिर्फ तमाशाबीन नहीं है। 80 के दशक में डेथ स्क्वाड को पैसा देने से लेके 90 में गैंग मेंबर डिपोर्ट करने तक, अमेरिका के कामों ने ही वो हालात बनाए जिनसे लोग आज भाग रहे हैं।
ये बहुत सीधी और बड़ी बात है, मतलब प्रॉब्लम की जड़ें काफी हद तक अमेरिका की अपनी पॉलिसी में है। दूसरा संदेश?
दूसरा है वो ऐतिहासिक भूलने की बीमारी, हिस्टोरिकल एमनीजिया। ऐसा लगता है कि हर बार जब बॉर्डर पर भीड़ बढ़ती है, तो अमेरिकी पॉलिसी बनाने वाले और मीडिया ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे ये पहली बार हो रहा है। वो भूल जाते हैं कि 10, 20, 30 साल पहले उन्होंने क्या किया था जिसका ये नतीजा है।
हाँ, ये जानबूझकर भूलना या सुविधा के हिसाब से भूलना।
बिल्कुल, और इसी वजह से जो प्रतिक्रिया होती है वो हमेशा फौरी होती है। बॉर्डर सील करो, दीवार बनाओ, जड़ों पर कोई ध्यान नहीं, और ये चक्कर चलता रहता है।
ये तो जिंदगी में भी होता है, हम अपनी गलतियों से नहीं सीखते हैं तो दोहराते रहते हैं। तीसरा थीम?
तीसरा जो बहुत मानवीय है वो है नीतियों की इंसानी कीमत। किताब हमें याद दिलाती है कि पॉलिसी सिर्फ कागज पर नहीं बनती। वॉशिंगटन में लिए गए फैसले, जिन्हें रिमूवल्स या डिटेरेंस जैसे ठंडे शब्दों में कहा जाता है,
हाँ, बड़े इम्पर्सनल लगते हैं शब्द,
वो असल में होंडुरास के किसी परिवार की जिंदगी तबाह कर देते हैं जो गैंग से तंग आ चुका है, या उस अकेले बच्चे की जो रेगिस्तान पार कर रहा है, या उस माँ की जो बॉर्डर पर अपने बच्चे से अलग हो गई। ये आंकड़ों की नहीं, इंसानों की कहानी है जिन्हें सिस्टम ने हाशिए पर धकेल दिया है।
ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हर आंकड़े के पीछे एक इंसान है।
और कोई मुख्य थीम?
एक और है, द्विपक्षीय नाकामी और सिस्टम की प्रॉब्लम। अक्सर ट्रंप की नीतियों की बात होती है और वो वाकई क्रूर थी, पर किताब कहती है कि ये नाकामी दशकों पुरानी है। इसमें रिपब्लिकन डेमोक्रेट सब शामिल हैं, रीगन से लेकर क्लिंटन, ओबामा, ट्रंप, बाइडन तक। ये किसी एक पार्टी की गलती नहीं, ये पूरे सिस्टम की विफलता है। और इमिग्रेशन कोर्ट, डिटेंशन सेंटर, ये सब भी इसी सिस्टम का हिस्सा है।
हाँ, वो अक्सर प्रॉब्लम को सुलझाने के बजाय उसका हिस्सा बन जाते हैं, अक्षम है या अन्याय को बढ़ाते हैं।
और वो गैंग वाली बात, वो भी एक मुख्य थीम हुई ना?
हाँ बिल्कुल, गैंग की समस्या को बनाना और फिर एक्सपोर्ट कर देना। ये जानना कि MS-13 जैसा गैंग अमेरिका में जन्मा, लॉस एंजेलिस में, और फिर उसे डिपोर्ट करके मध्य अमेरिका भेजा गया जहां उसने तबाही मचा दी, ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। अमेरिका ने अनजाने में एक राक्षस पैदा किया और फिर उसे बाहर भेज दिया, जिसके नतीजे वो आज भी भुगत रहा है।
ये सारे पॉइंट्स तो सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या किताब में कुछ ऐसी लाइनें या विचार हैं जो खास तौर पर चुभते हैं या याद रह जाते हैं?
हाँ, कई हैं। सीधे कोट शायद ना हो, पर उनके भाव कुछ ऐसे हैं जो दिमाग में बैठ जाते हैं। जैसे एक विचार है, आज जो लोग सीमा पर आ रहे हैं वो उस युद्ध के बच्चे और पोते पोतियां हैं जिसे हमने, अमेरिका ने फंड किया था। हम उन्हें नहीं पहचानते, पर वो हमें याद रखते हैं।
गहरा मतलब है इसका कि अमेरिकी पॉलिसी मेकर शायद इन्हें अजनबी समझे, पर इन लोगों की जिंदगी में अमेरिका हमेशा से मौजूद रहा है, अक्सर एक नेगेटिव ताकत के तौर पर। इतिहास पीछा नहीं छोड़ता।
बिल्कुल। और दूसरा विचार इसी से जुड़ा है, हमने सिर्फ लोगों को डिपोर्ट नहीं किया, हमने एक संकट को डिपोर्ट किया। हमने लॉस एंजेलिस में बनी एक प्रॉब्लम को मध्य अमेरिका की कमजोर जमीन में बो दिया और फिर हैरान हुए जब वो एक राक्षस बन गया।
ये सीधे सीधे 90 का दशक की पॉलिसी पर है कि वो समाधान नहीं था, उसने एक नया बड़ा संकट पैदा कर दिया। वो राक्षस आज की गैंग हिंसा है।
सही। और किताब का टाइटल ही है Everyone Who's Gone Is Here, जो चला गया है वो यहीं है।
इसके क्या मायने हो सकते हैं?
कई हो सकते हैं। एक तो सीधा कि जो लोग घर से चले गए, गॉन, वो अब बॉर्डर पर यहीं हैं। पर शायद गहरा मतलब इतिहास का है। अतीत की घटनाएं, गलतियां, गृह युद्ध के भूत, डिपोर्ट हुए गैंग मेंबर, हिंसा के शिकार, वो गए नहीं हैं, वो आज भी मौजूद हैं वर्तमान संकट के रूप में। कोई भी समाज अपने अतीत से भाग नहीं सकता, वो हमेशा यहीं रहता है किसी न किसी शक्ल में।
ये तो फलसफा भी है।
हाँ, और एक और विचार जो सिस्टम पर है, ये सिस्टम केस निपटाने के लिए बना है, जिंदगियां सवारने के लिए नहीं।
मतलब प्रोसेस इंसान से ज्यादा जरूरी है, फाइलों का निपटारा हो, इंसान का क्या होता है वो बाद की बात है।
हाँ, कुछ वैसा ही। और आखिरी जो बहुत तकलीफ दे है, इस सिस्टम में उम्मीद भी एक तरह का टॉर्चर बन जाती है।
उम्मीद टॉर्चर कैसे?
सोचिए, सालों साल केस चलता है, पता नहीं मंजूरी मिलेगी या डिपोर्ट कर देंगे। ये जो अनिश्चितता है, इसमें राहत की उम्मीद ही एक लगातार दर्द का कारण बन जाती है।
समझ गया। ये सब जानने के बाद एक आम इंसान के तौर पर हम इस जानकारी का क्या करें? ये किताब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम आ सकती है?
सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, ये कोई सेल्फ हेल्प बुक नहीं है जाहिर है, पर मुझे लगता है ये हमें कई तरह से मदद करती है। पहला, एक बेहतर और सूचित नागरिक बनने में।
कैसे?
अब जब हम TV पर या अखबार में बॉर्डर संकट की खबरें देखेंगे तो हम सिर्फ हेडलाइन पढ़ के आगे नहीं बढ़ेंगे। हम शायद सोचेंगे, अच्छा, ये लोग कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, वहाँ क्या चल रहा है, इसमें अमेरिका की या दूसरी बाहरी ताकतों की क्या भूमिका है, क्या ये सच में अवैध है या ये शरणार्थी हैं? ये हमें सवाल पूछना सिखाती है।
हाँ, सतही बातों से आगे देखना, मीडिया लिटरेसी जिसे कहते हैं।
बिल्कुल।
और दूसरा, सहानुभूति बढ़ाने में। जब हम जुआन रोमागोजा की कहानी पढ़ते हैं या उन परिवारों के बारे में सोचते हैं जिन्हें गैंग से बचने के लिए भागना पड़ता है, तो ये लोग सिर्फ प्रवासी या आंकड़े नहीं रहते।
वो इंसान बन जाते हैं।
हाँ।
हम उनमें अपने जैसे माँ बाप देख सकते हैं जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी करेंगे। ये जो मानवीय पहलू है, ये उस नफरत और डर का मुकाबला कर सकता है जो अक्सर प्रवासियों के खिलाफ फैलाया जाता है।
दूसरों की जगह खुद को रखकर सोचना। तीसरा फायदा क्या हो सकता है?
शायद नीतियों को लेकर हमारी समझ, ये समझना कि सिर्फ सख्ती से काम नहीं चलेगा। ये किताब 40 साल का सबूत देती है कि दीवारें बनाने या बॉर्डर पर पैरा बढ़ाने से लोग आना बंद नहीं करेंगे जब तक उनके अपने देश में हालात इतने खराब हैं।
हाँ, जब तक पुश फैक्टर मजबूत है।
सही। तो शायद ये हमें उन नीतियों का समर्थन करने के लिए प्रेरित करे जो जड़ों पर काम करती हैं, जैसे मध्य अमेरिका में भ्रष्टाचार से लड़ना, सही जगह विकास में मदद करना या शरणार्थी सिस्टम को बेहतर बनाना।
और चौथा, शायद ये हमें सिखाता है कि नीतियों के नतीजे दूर तक जाते हैं। आज हम जो फैसला लेते हैं उसका असर सालों बाद अगली पीढ़ियों पर भी पड़ सकता है। ये हमें लॉन्ग टर्म सोचने की जरूरत याद दिलाता है।
बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये किताब हमें दुनिया को, अमेरिका मध्य अमेरिका के रिश्ते को और माइग्रेशन जैसे जटिल मुद्दे को ज्यादा गहराई से और ज्यादा इंसानियत से देखने में मदद करती है।
बिल्कुल। तो आखिर में इस पूरी बातचीत से आपके लिए सबसे बड़ी टेक अवे या सबसे चौंकाने वाली बात क्या रही?
मेरे लिए तो वो ऐतिहासिक भूलने की बीमारी वाली बात सबसे असरदार रही। ये देखना कि कैसे एक देश अपनी ही गलतियों को बार बार दोहरा सकता है क्योंकि वो अतीत को देखना नहीं चाहता। ये निराशाजनक भी है और एक चेतावनी भी। जब तक ईमानदारी से इतिहास का सामना नहीं करेंगे तब तक समाधान नहीं मिलेगा। और ये कि ये किसी एक पार्टी की नहीं, सिस्टम की प्रॉब्लम है।
और मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ ही सब कुछ है। बॉर्डर पे जो दिखता है वो कहानी का बस आखिरी पन्ना है। पूरी किताब पीछे है जिसमें कई किरदार हैं और अमेरिका एक मुख्य किरदार रहा है। माइग्रेशन अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है, ये उन गहरी प्रॉब्लम्स का लक्षण है जिन्हें हम अक्सर देखना नहीं चाहते।
सही कहा। तो हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। क्या कोई भी देश, चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, अपने अतीत के कामों से, खासकर विदेश नीति के नतीजों से बच सकता है? या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवीय मूल्यों में संतुलन बनाना हर समाज के लिए एक कभी न खत्म होने वाली चुनौती है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।